बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है यूक्रेन का बहरान, रूस और मगरब के दरमियान कशीदगी में इजाफ़ा। तो लीजिए मुलाहजा फरमाइए अंदाज़े जहाँ। नाज़रीन, यूक्रेन के मशरक़ी और जनूबी इलाकों में हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाम के मुजाहरों में शिद्दत के साथ ही मगरिब और रूस के दरमियान कशीदगी भी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के अंदर से मौसूला रिपोर्टों में बताया गया है कि हुकूमत यूक्रेन ने जनूबी और मशरक़ी इलाकों में मुखालिफीन के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है, लेकिन अभी तक मसले के हल की कोई उम्मीद नहीं निकल सकी है। दोनेस्क, खारकोफ और लुहांस्क में यूक्रेन से अलहदगी के लिए मुजाहरों की शिद्दत ज़्यादा है। इसी के साथ जनूबी और मशरक़ी यूक्रेन के दीगर शहरों में भी हालिया दिनों में आवाम ने मुजाहरे करके रूस के साथ इलहाक के लिए रेफरेंडम का मुतालबा किया है। बाद शहरों में आवाम ने सरकारी इमारतों पर कब्ज़ा करके यूक्रेन का परचम उतार दिया और रूस का परचम लहरा दिया। रिपोर्टों में बताया गया है कि इन इलाकों में आवाम और यूक्रेन के फौजियों के दरमियान चूहे बिल्ली का खेल जारी है। सरकारी इमारतों पर कभी हुकूमत के मुखालिफिन और रूस के हामियों का कब्ज़ा हो जाता है और कभी यूक्रेन के फौजियों का। इस दरमियान हुकूमत अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन की अबूरी हुकूमत के मुखालिफिन की मदद करने और जनूबी और मशरक़ी इलाकों में जारी हंगामों में बराह रास्त मुदाखलत करने का इल्ज़ाम लगाया है। दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन की हुकूमत को खबरदार किया है कि मुखालिफिन की सरकोबी में हुकूमत ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करे। रूस ने कहा है कि यूक्रेन में रूसी नजात बाशिंदों की सरकोबी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रूस ने इसी के साथ यूक्रेन के लिए फेडरल निज़ाम हुकूमत की तजवीज़ पेश की है और रूस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि यूक्रेन में सिर्फ यही निज़ाम हुकूमत मसाइल को हल कर सकता है, लेकिन हुकूमत यूक्रेन ने बज़ाहिर इसको मुस्तरद कर दिया है। जहाँ एक तरफ अमरीका, यूरोप और नेटो ने मास्को पर यूक्रेन में मुदाखलत करने और क्रीमिया का सिनारियो यूक्रेन के मशरक़ी और जनूबी इलाकों में दोहराने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया है, वहीं रूस ने कहा है कि मगरिब और नेटो अपने इश्तियाल अंगेज़ इकदामात के ज़रिए आलमी जंग के हालात पैदा कर रहे हैं। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोफ ने कहा है कि नेटो यूक्रेन के बहरान से गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और इस बहरान के बहाने अपनी अफवाज को मशरक़ की जानिब रवाना करके रूस के करीब पहुंचाना चाहता है। उन्होंने कहा है कि नेटो का ये इकदाम खुद यूक्रेन की बका और उसके सुबात व इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक है। हम आज के प्रोग्राम में यूक्रेन के मशरक़ी और जनूबी इलाकों में जारी तहरीक के जायज़े के साथ ही रूस और मगरिब के दो तरफ़ा इल्ज़ामात का भी जायज़ा लेंगे। इसी के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है, रूस या मगरिब। आज अमरीका, यूरोप और नेटो रूस पर यूक्रेन के मशरक़ी और जनूबी शहरों में जारी तहरीक में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुमकिन है कि रूस इन इलाकों में आवाम के मुजाहरों में शिद्दत और वसत के असबाब फराहम कर रहा हो, लेकिन नवंबर 2013 से रवा साल की 20 फरवरी तक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में उस वक्त के मुंतखब सदर यानकोविच के ख़िलाफ़ जो पुरतशद्दुद तहरीक चल रही थी, उसमें यूरोप, अमरीका और नेटो ने मुदाखलत नहीं की थी। जब उन्होंने खुद यूक्रेन में खुली मुदाखलत की है, तो अब रूस पर एतराज़ का उन्हें हक क्या पहुंचता है, जबकि यूक्रेन रूस का पड़ोसी भी है। अमेरिका ने इससे पहले रूस पर तीसरी आलमी जंग के हालात पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया था और आज रूस कह रहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी तीसरी आलमी जंग के असबाब फराहम कर रहे हैं। इस तनाजुर में हम इस बात का जायज़ा लेने के साथ ही कि क्या यूक्रेन का बहरान तीसरी आलमी जंग पर मुंतज हो सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जंग के हालात कौन पैदा कर रहा है। लेकिन पहले हमारे आज के प्रोग्राम में लंदन स्टूडियो से बरसगीर के मुमताज़ दानश्वर और तजिया निगार प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ और कराची स्टूडियो से पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार आगा मसूद हुसैन हिस्सा लेंगे और टेलीफोन लाइन के ज़रिए आज के प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और मुमताज़ तजिया निगार शमीम फैजी को। तो चलते हैं लंदन स्टूडियो जहां प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब मौजूद हैं, गुफ्तगू का आगाज उनसे करते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम
जी। जनाब, यूक्रेन के मशरक़ी और जनूबी इलाकों के हालात के बारे में आपका तजिया क्या है? ये हालात यूक्रेन को किस तरफ ले जा रहे हैं?
ये जो हुकूमत यूक्रेन में आज कायम है वो
जी
तो गैर कानूनी है, उसको किसी ने इलेक्ट नहीं किया। ये तो एक वहाँ पर डिमोस्ट्रेशंस हुए जिसको मगरबी ताकतों ने पूरी तरह सपोर्ट किया, और अमेरिका ने 5 बिलियन डॉलर खर्च किए इन लोगों के लिए। जब ये लोग वहाँ मैदान में बैठे हुए थे केव में, तो मगरबी ममालिक के लीडर आते थे और कहते थे कि जारी रखो इसको, हम तुम्हारे साथ हैं। इन लोगों ने ये सारी कंस्पिरेसी की, और जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, जिसको जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुआ था, उसको इन्होंने निकाल दिया, उसके दफ्तर पे हमला कर दिया, आगे आग लगा दी वहां पर, और जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस मुल्क का, उसके उसके प्राचीर उड़ा दिए। उसके बाद ये लोग जो हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आके बैठ गए, और ये अपने को डिक्लेयर कर दिया कि हम जो हैं वो मुल्क चलाएंगे। और इसको मगरबी ममालिक ने दिन रात तो वो डेमोक्रेसी के लिए नारे देते हैं, लेकिन इस वक्त जब मौका आया तो ये एक गैर कानूनी हुकूमत जो थी उसको उन्होंने फौरन तस्लीम कर लिया। लेकिन इनको ये पता है कि मुल्क जो है वो दो टुकड़ों में तकसीम है। वो वेस्ट जो है, जो वेस्टर्न यूक्रेन है, उसमें तो यूरोप के साथ वो मिलना चाहते हैं, लेकिन जनूबी और मशरकी जो यूक्रेन है वहाँ रशियन जबान बोली जाती है ज़्यादातर, और वहाँ के लोग भी रशियन हैं, और वो रशिया के साथ रहना भी चाहते हैं। वो इन लोगों को रिकग्नाइज नहीं करते हैं, क्योंकि हैं ये कौन लोग? अगर आप देखें, जब ये जैसे ये पावर में आए, और 6 मिनिस्ट्रियाँ इन्होंने सबोदा पार्टी को दी, जो कि वहाँ की एक नियो फैशिस्ट पार्टी है, और यूरोपियन यूनियन ने भी उसको कंडेम कर रखा है, उस पार्टी को। उसके 6 मिनिस्टर हैं, और ईस्टर्न यूक्रेन जो है, मशरकी यूक्रेन का कोई मिनिस्टर नहीं है इस गवर्नमेंट के अंदर जो है। और उन्होंने एक काम किया कि रूसी जबान को, जो कि एक सरकारी जबान मानी जाती थी, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया जो है। तो ये इनसे जाहिर होता है कि ये लोग बेसिकली जो है वे फैशिस्ट और रेसिस्ट हैं, जो पावर में आ गए हैं, और वेस्ट वाले जो हैं उनको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। यानी विक्टोरिया नूलैंड की जो जो टेलीफोन कन्वर्सेशन था, उससे पता चलता था कि अमेरिका किस तरह इन्वॉल्व थे, इन तमाम फोर्सेस को सिलेक्ट कर रहा था उस वक्त, जबकि ये फैशिस्ट जो है वहां पर गोलियां चला रहे थे मैदान में, और लोगों को कत्ल कर रहे थे दूसरी बिल्डिंगों में खड़े होकर के। विक्टोरिया नोलैंड वहां मिठाई बांट रही थी मैदान में लोगों को जो है कि जारी रखो इस डेमोन्स्ट्रेशन को जो है। तो हालात जो है वो तो वेस्ट के बनाए हुए हैं, लेकिन अब यह है कि पहले बात यह है कि अमेरिका अब तक छोटे छोटे मुल्कों पर हमला करता रहा है, कभी वियतनाम पर कर दिया उसने, तो कभी सेंट्रल अमेरिका में कर दिया मुल्कों पर, कभी उसने इराक़ पे कर दिया, तो कभी लीबिया पे करवा दिया, कभी सीरिया पे कर दिया, कभी सैंक्शन लगा दिए ईरान के खिलाफ। लेकिन अब की उनका पाला पड़ा है एक मजबूत और ताकतवर मुल्क से, जो जो उनके सामने झुकने वाला नहीं है। यानी कितना ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अखबार और टीवी सारे जो है, तो लेकिन वो मुल्क झुकने वाला नहीं। मसला यह है कि फ्रॉम 1988 से रूस जो है वो बराबर पीछे हटता चला गया है। उसकी 14 रियासतें जो है वो इन्होंने अलग अलग मुल्क बना दिए हैं और उनको नेटो में शामिल कर लिया। रूस पीछे हटता चला गया, लेकिन यूक्रेन जो था वो आखिरी वो जगह थी जहां पर रूस ने कहा कि अब एनफ इज एनफ। रूस की तारीख भी जो है, अगर आप यूक्रेन की तारीख देखें और रूस की तारीख देखें, तो रूस पर जितने हमले हुए हैं 1918 में, बहुत हिस्सा यूक्रेन का जो था वो दूसरी ताकतों ने कब्जा कर लिया था उस पर, और 1941 में हिटलर ने जो अपनी डिविजन्स भेजी हैं, फौजें भेजी हैं, वो भी यूक्रेन के जरिए भेजी थी। तो यूक्रेन जो है वो रूस के लिए बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट मुल्क है। वो रूस कभी इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि वहाँ पर फैशिस्ट आके बैठ जाए और फिर वहां पर से नेटो जो है वो रूस को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे, गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करे। देखिए, यूक्रेन का मसला नहीं है, ये मसला है कि धीरे धीरे वो रूस की सरहद तक पहुंचना चाहते हैं और रूस को वो गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, और इसलिए वो यूक्रेन में गए। और यूक्रेन में उन्होंने उन ताकतों की मदद की है जो कि फैशिस्ट और रेसिस्ट ताकतें हैं, सिर्फ
जी
इसलिए कि उनका एक सियासी और जागरफी का का ऑब्जेक्ट है कि रूस को किसी तरह से घेरे में लो और उसको गैर मुस्तहकम करो, और इस और रूस इस बात को समझता है और इसलिए रूस किसी हालत में भी तैयार नहीं होगा कि ये ताकतें वहां पर आके जम जाए। जो है
जी प्रोफेसर साहब, यूक्रेन के मशरकी और जनूबी इलाकों में अलाहदगी और रूस से इलहाक के लिए तहरीक रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। ये तहरीक आप क्या समझते हैं कि जैसा मग़रिब रूस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, ये तहरीक रूस चला रहा है, इस तहरीक के पीछे रूसी ताकतें हैं, या खुद यूक्रेन के जनूबी और मशरकी इलाकों के अवाम हैं जो यूक्रेन से अलग होकर रूस से मिलना चाहते हैं?
देखिए, मशरकी और 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 जनूबी यूक्रेन जो है, जो इस वक्त कैबिनेट है उसमें उनका कोई नुमाइंदा नहीं है। पहली बात, कोई उनका नुमाइंदा नहीं है। उनकी जबान को उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था कि वो जबान इस्तेमाल नहीं हो सकती, और हालत यह है कि लोग जो हैं वहां के वो परेशान है कि उन्होंने हिटलर के जमाने में फैशिज्म से बहुत नुकसान उठाए हैं, हजारों लोगों ने जाने दी हैं और अपने को डिफेंड किया था। आज वो वही ताकतें जो है वो कीव में सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गई हैं, तो लोग बहुत परेशान हैं वहाँ के लोग, और वो अपनी हिफाजत के लिए रूस से मदद चाहते हैं। वो रूस के सी जबान बोलते हैं और रूस से बिल्कुल करीब हैं। और देखिए, एक ये भी आप याद रखें कि वो इलाका जो है वही जो है माशी तौर पर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है वहाँ का, जो है सारा पैदावार जो होती है मुल्क की वो उस इलाके में होती है। कीव में तो बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े ओलिगार्क्स रहते हैं और सियासी लोग रहते हैं, लेकिन रियल जो लोग पैदा करते हैं माइंस उसी इलाके में है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो भी उसी इलाके से होती है। तो वो लोग जो है वो परेशान है इन लोगों की ताकत में आने से कि ये लोग जो है वो रेसिस्ट हुकूमत कायम करेंगे, ये फासिस्ट हुकूमत कायम करेंगे और अमेरिका से मिल करके ये रूस के खिलाफ डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। इसमें रूस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रूस ने ये सही कहा है कि अगर इनके खिलाफ कोई जाति की गई या उनके ऊपर जुल्म किया गया तो वो उनकी मदद के लिए आएगा, और इसलिए रूस की फौजें जो है वो 40 मील दूर बॉर्डर से हैं वहां मौजूद। ये तो रूस भी नहीं रूस भी कहता है कि है हमारी फौजें वहां पर जो है, और वो फौजें जो है सिर्फ इसलिए हैं कि ये जो फैसिस्ट हैं वो आकर के इन लोगों के ऊपर जुल्म न करने कर सकें इस इलाके में जो है, लेकिन इसमें रूस का कोई लेना देना नहीं है। ये सारी मुसीबत जो खड़ी की है ये मगरबी ताकतों ने खड़ी की है, और अब हालत यह है कि जब यूक्रेन को पैसों की जरूरत है तो इनमें से कोई भी अपनी जेब में हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है, 1 बिलियन भी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। बयानात तो देने तैयार थे, गालियां देने तो तैयार थे रूस को, लेकिन कोई ताकत जो है वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है उनको। जो है रूस अकेला मुल्क था जिसने 15 बिलियन इनको ऑफर किया था यूक्रेन को। आज बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन किसी कल मैं देख रहा था कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो वादा किया था वो भी कहती है कि अभी तक अभी कोई तय नहीं हुआ कि ये हम देंगे या नहीं देंगे उनको। तो हालत तो ये है कि उनकी हालत इतनी खराब है उस मुल्क की, लेकिन कोई देने पर पैसे तैयार नहीं है सिवाय रूस के।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी रहनुमा और मुमताज़ सियासतदान शमीम फैजी साहब से टेलीफोन लाइन के जरिए राबता बरकरार हुआ है। फैजी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
जनाब, यूक्रेन के मशरकी और जनूबी इलाकों में हालात काफ़ी ख़राब हैं, और वहाँ सूरत हाल यह है कि सरकारी इमारतों पर आवाम का कब्ज़ा हो जाता है, फिर वहाँ की फ़ौज का भी कब्ज़ा कर लेती है। आज भी जो रिपोर्टें मिली हैं, मज़ीद कुछ सरकारी इमारतों पर आवाम ने कब्ज़ा कर लिया है, तो ये वहाँ पर चूहे बिल्ली का एक खेल सा जारी है। यूक्रेन की अबूरी हुकूमत के साथ ही अमरीका, यूरोप और नेटो रूस पर यूक्रेन के मशरकी और जनूबी इलाकों में आवाम को सड़कों पर लाने और उनकी तहरीक को महमेज करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप उनके इस इल्ज़ाम के बारे में?
ये असल में जो उन्होंने बोया है वो आप काट रहे हैं
जी।
यूक्रेन में जो बोरान शुरू हुआ वो बोरान बुनियादी तौर पर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का पैदा किया हुआ है। जब यूक्रेन के कानूनी तौर पर मुंतखब सदर ने
जी जी
यूरोपीय यूनियन की शराइत को मानने से इनकार कर दिया था
जी,
और उन्होंने रूस से मदद लेने का फैसला किया था, उस वक्त नाटो, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, इन लोगों ने मुंतखब सदर के खिलाफ अवाम को भड़काया और गैर का इसी तरह से उन्होंने उनको बिल्डिंगों पर, इमारतों पर, सरकारी दफातर पर कब्जा करने के लिए उकसाया, जिसके नतीजे में ये बोहरान पैदा हुआ। हालांकि उनके उस वक्त के मुंतखब सदर को जाना पड़ा, लेकिन अमेरिका ने उसमें कोई ऐसी बात नहीं देखी कि जो गैर कानूनी हो। उसके बजाय उन्होंने गैर कानूनी तौर पर इस्तेदार पर कब्जा करने वालों को यूक्रेन का हुक्मरान तस्लीम कर लिया, जिसके बाद ही यूक्रेन में तब्दीली पैदा हुई और क्रीमिया का वाकया हुआ, क्रीमिया को एलर्जी अख्तियार करनी पड़ी। इससे ही हौसला पाकर बुनियादी तौर पर वहाँ की उबूरी हुकूमत से नाराज अवाम अब मशरकी और जनूबी यूक्रेन में मैदान में उतरे हैं। इसमें किसी के हाथ होने का क्या सवाल है? हाथ तो पहले अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने लगाया था। आज बोरान वहाँ शदीद हो चुका है। बुनियादी तौर पर ये एक माशी बोरान है जिसको हल करने की कोशिश पहले की गई थी, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया था, और अब माशी बोरान और शदीद हो चुका है। तो जाहिर है यूक्रेनी अवाम मशरिक और जनूब में भी अब हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पे रहिएगा। और नाज़रीन, चलते हैं कराची जहाँ पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तजिया निगार आगा मसूद हुसैन साहब मौजूद हैं। आगा मसूद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, यूक्रेन के मौजूदा हालात का जिम्मेदार आपकी नज़र में कौन है, रूस या मगरिब?
वालेकुम अस्सलाम
जी, मेरा सवाल अगर आपने मुलाहिजा फरमाया हो, यूक्रेन में जो हालात चल रहे हैं।
देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने बाकायदा यूक्रेन में खुफिया तौर पर मुदाखलत की थी
जी।
और मुदाखलत के नतीजे में आपको मालूम है कि विक्टर कंशोव जो थे, जो सदर थे, वो उनके खिलाफ बड़ी जबरदस्त किस्म की मुहिम और एहतजाज शुरू हुआ, जिसकी वजह से वो वहां से चले गए। लेकिन विक्टर के बारे में आपको मालूम है कि उन पर करप्शन के बड़े संगीन इल्जाम थे, और उसी इल्जाम की बुनियाद पर यही हुआ कि लोग वहाँ जमा हुए। इसमें कोई शक नहीं कि इस गम व गुस्से को कि जो वहाँ पर वहाँ के अवाम में मौजूद था, वो मगरिब ने और खुशियत के साथ यूरोपियन यूनियन ने उसको हवा दी, और जिसकी वजह से वहाँ एक बड़ा शदीद बहरान हुआ। अब इससे पहले आपका एक और सवाल था जो मैं आपकी खिदमत में मौतबाना तौर पर अर्ज करना चाहता हूँ कि आप मशरकी और जनूबी यूक्रेन के बारे में आपने सवाल किया। मैं समझ रहा हूँ कि उसमें रूस का बहुत बड़ा हाथ है। हमें बहुत ईमानदारी और गैर जानबदारी से हालात का तजिया करना चाहिए। आपको मालूम है कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, जब लेनिन की सरबराही में रिवॉल्यूशन आया, तो ये जो यूक्रेन था इससे पहले जो था वो रूस का हिस्सा था, लेकिन जब बोल्शेविक ने इसको यूक्रेन को बिल्कुल एक अलहदा ममलिकत करार दी, और उन्हीं के ज़माने से जो है उसकी उसके उसकी तरक्की, और वहीं से जो है यूरोप के लिए गैस जाती थी। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त मशरकी और जनूबी यूक्रेन में जो सिलसिला जारी है, उसके अंदर रूस का खुला हुआ हाथ है। अब देखिए, बात असल यह है कि क्रीमिया में जो वाकयात हुए उसकी वजह से जो है मगरब को पसपाई हुई, और मगरब ये नहीं समझ रहा था कि इतनी जल्दी प्यूटिन जो है वो अपनी फौज ले आएंगे और फौरन रेफरेंडम भी कराएंगे और उसको उसके इलहाक को जो है कानूनी शक्ल देंगे। तो मगरब तो हैरत ज़्यादा है, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि इसके बाद वो मजीद मशरक की तरफ बढ़ेंगे और जनूब की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन यह कि अब उनकी जो पसपाई हुई है क्रीमिया पे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक एक ऐसा कदम था कि जिस पर के लोगों ने, मैं समझता हूँ कि उन प्यूटिन का ये कदम जायज था, क्योंकि आपको मालूम है कि सन 1954 में ख्रुश्चेव ने शराब के नशे में क्रीमिया को जो है यूक्रेन का हिस्सा करार दिया था। लेकिन अब रूस की जो हिम्मत बढ़ रही है और वो बाकायदा ये है कि उन इलाकों में जहाँ पे रूसी बोले जाते हैं लेकिन अक्सरियत वहाँ भी नहीं है। अभी जो जो अभी जो मतलब बाज अखबारात ने जो खबरें शाये की जो बड़ी मुस्तनद हैं उसमें 2/3 जो लोग हैं यूक्रेन के जिसमें मशरक और जुनूब के लोग भी शामिल हैं वो रूस के साथ नहीं मिलना चाहते, वो यूरोप के साथ रहना चाहते हैं और उनकी जो जो सोच है और उनकी जो जमहूरियत की सोच है वो उन्हीं के साथ है। और ये जुमले कहना कि वो फासिस्ट है, मैं समझता हूँ कि ये सहाफत के साथ नाइंसाफी है, वो फासिस्ट नहीं है बल्कि ये लोग के जिन्होंने कब्जा कर रखा है ये बाकायदा एक ऐसी सूरत हाल को पैदा कर रहे हैं कि अगर मगरिब ने एक तरफ तो उसकी पसपाई क्रीमिया पर हो चुकी है लेकिन अगर मगरिब ने ये फैसला किया या अमेरिका ने ये फैसला किया कि ये बहुत ज्यादा हो गया है और प्यूटिन जो है उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है और वो अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि मगरिब में अब वो ताकत नहीं है, वो कुव्वत नहीं है, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये तौसी पसंदाना सोच जो है ये बिल्कुल गलत है। लोगों ने क्रीमिया के सिलसिले में जो खामोशी इख्तियार की वो बिल्कुल सही थी क्योंकि क्रीमिया जो था बुनियादी तौर पर वो रूस का हिस्सा था और ख्रुश्चेव ने, मैंने जैसे आपकी खिदमत में पहले अर्ज किया कि शराब के नशे में इसको उन्होंने हवाला कर दिया था यूक्रेन के, तो अब सूरत हाल बड़ी गंभीर है और मेरा अपना ये ख्याल है कि इस सिलसिले में प्यूटिन को जरा सब्र तहमल का मुजाहरा करना चाहिए और अगर इस तरीके से मजीद सूरत हाल बिगड़ी तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मगरब अपनी इस मतलब शिकस्त को या पसपाई जो क्रीमिया की सूरत में हुई है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है यूरोप में एक और जंग की तरफ चले जाएंगे। और ये भी मैं आपकी खिदमत अर्ज करूँ कि यूरोप की बहुत सी अपनी खामियां हैं, मिसाल के तौर पर यह है कि यूक्रेन से जो गैस जाती है उसके तकरीबन 3-4 बिलियन डॉलर जो है अभी तक उसको अदा नहीं किए, यही वजह है कि यूक्रेन के अंदर जो माशी सूरत हाल है वो ज्यादा बेहतर नहीं है और उनको वो पैसे देने चाहिए। तो ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं और मैं आपकी खिदमत अर्ज करूँ कि देखिए हमारी तो जिम्मेदारी ये होती है कि हम दोनों तरफ देखें कि सूरत हाल क्या है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि प्यूटिन को क्रीमिया के बाद अपने आप को कंसोलिडेट करना चाहिए था और अपने कंसोलिडेट करने के बाद मजीद ये है कि गुफ्तगु शनीद के जरिए बात आगे बढ़ानी चाहिए थी। अब ये जुनूबी और मशरिकी जो हिस्से हैं यूक्रेन के जिसमें ये रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, रेफरेंडम तो हो ही नहीं सकता इसलिए कि ये तो इलाके मतलब ये कि पहले ही से इनके साथ थे यूक्रेन के साथ, फिर दूसरी बात ये कि 2/3 आवाम जो है वो तो इनके साथ आने ही नहीं चाहते। कुछ रूसी बोलने वाले, और ये भी मैं आपको खुदा दूंगा कि हम लोगों को समझना चाहिए कि जो रूसी बोलने वाले हैं वो ज्यादा तादाद में नहीं है जिस तरीके से क्रीमिया में थे, वैसे क्रीमिया में तो तातारी मुसलमान भी थे, उनके साथ क्या हुआ, उनको उन्होंने भी मतलब ये कि पुतिन से सख्त नाराजगी का इजहार किया है, उनके सिलसिले में भी जो सूरत हाल है आपको मालूम है, उनकी जबान के मसले में, उनकी तहजीब के मसले में, उनके मजहब के सिलसिले में रूस का रवैया क्या है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस सिलसिले में प्यूटिन को जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। वो अपनी केजीबी की जो पुरानी पॉलिसी है, क्योंकि ये केजीबी के सरबराह भी रहे हैं, ये केजीबी की पुरानी पॉलिसी पे चलते हुए एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि आलमी अमन के हवाले से बहुत खतरनाक साबित होगी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोफेसर साहब। जनाब नवम्बर 2013 में यूरोप के साथ इक्तसादी तआवुन के मुआहदे पर दस्तखत से सदर यानकोविच के इनकार के बाद कीव में मगरिब नवाजों ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी। उस वक्त से 20 फरवरी तक यूरोप और अमेरिका के रहनुमाओं और वज़राए खारजा ने तसलसल के साथ कीव के दौरे किए और मुखालिफिन से मिल के उनकी पीठ वो थपथपाते रहे, हत्ता सड़कों पर उनके इज्तिमात के अंदर जाके तकरीरें की, उनके हौसले बढ़ाए और उनके लिए माली इमदाद का ऐलान भी किया। यह सब हुआ तो और उसके बाद फिर जो भी है राइट सेक्टर के लोग हैं जिन्होंने आके जो मुआहदा खुद यूरोप ने करवाया था उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए कब्जा कर लिया। तो इस पर अब जो रूस का जो भी रद्द अमल है, क्या अमेरिका और यूरोप को इस रद्द अमल की तवक्को नहीं थी?
देखिए मेरा ख्याल तवक्को नहीं थी, वो समझते थे कि रूस जैसा 1999 के बाद रूस जो है पीछे हटता चला गया है, बराबर उसने तमाम रियासतें जो हैं वो छोड़ दी हैं और मगरबी ममालिक जो है वो बढ़ते चले गए। देखिए नेटो जो था, जब रूस ने वारसा पैक ख़त्म कर दिया तो नेटो का कोई जवाब नहीं बनता था। नेटो क्यों कायम रही? नेटो क्योंकि वो एक मिलिट्री आर्म बन गई अमेरिका की और यूरोपियन यूनियन की। और उसके ज़रिए उन्होंने तमाम मुल्कों में फौजकशी की नेटो के ज़रिए। नेटो को वो आगे बढ़ाना चाहते थे, यूक्रेन पर वो अपना कब्ज़ा कायम करना चाहते थे और यूक्रेन के ज़रिए जो है वो रूस को घेरना चाहते थे। सारा मसला नेटो को ये था। और जो पिछले स्पीकर थे, मैं उनसे बिल्कुल राजी नहीं हूँ, एग्री नहीं करता हूँ। मेरा ख्याल उनको इतलात गलत हैं उनकी। बिल्कुल 70% लोग जो हैं ये नॉर्थ जनूबी और मशरक़ी यूक्रेन के वो रूस के साथ जाना चाहते हैं। ये बात ही उनकी गलत है। पता नहीं कौन सा सर्वे उन्होंने पढ़ा है, लेकिन मैंने जो सर्वे पढ़े हैं और जो बरतानिया में भी छपे हैं, 70% लोग जो है वो जाना चाहते हैं रूस के साथ जो है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो मगरबी पॉलिसी रही है रूस की तरफ वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अलेक्जेंडर पुश्किन की जो एक स्टोरी थी जिसमें एक फिशरमैन को, एक माहीगीर को एक सोने की मछली मिल गई थी और वो मछली उसकी तमाम मुरादें पूरी करती थी और वो करता मांगता चला गया उस मछली से। आखिर में उस मछली से कहा कि तुम आओ और मेरे घर में नौकरानी की तरह काम करो। वो मछली जो है वो समंदर में कूद गई और उसने कहा कि जो चीजें मैंने तुमको दी हैं वो सब मैं वापस लेती हूं। वो बशागीर जो था, जिसका महल उसने बना दिया था, आखिर में उसी हट में, उसी छोपड़ी में उसको वापस जाना पड़ा। तो मगरबी ताकतें जो थी वो बराबर रूस की पर के इलाकों पर कब्जा करती रही। पूरे सोवियत यूनियन के पुराने इलाकों पर उन्होंने नेटो वालों ने कब्जा कर लिया और भी आगे बढ़ना चाहते थे। और ये पिछले जो साहब थे, शायद इनको ये नहीं पता है कि पुतिन ने अपनी तकरीर में ये कहा था कि जो तातारी मुसलमान जो हैं उनके साथ ज़ाती हुई है पहले ज़माने में, अब नहीं होगी और उनकी ज़बान जो है वो एक सरकारी ज़बान क्राइमिया में मानी जाएगी जो है, और उनके तमाम हुकूक, उनके तमाम सकाफती हुकूक जो है वो दिए जाएंगे और उनको पूरी हक होगा किस तरह वो जाए। 40% तातारियों ने भी रूस के साथ इलहाक के लिए वोट डाले थे। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आज यूक्रेन में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से जो है मगरबी मालिक पे होती है। और उन मगरबी मालिक ने ये सब किया तो $5 बिलियन खर्च किए हैं अमेरिका ने वहां पर ये हंगामा कराने के लिए जो है। वो जिस वक्त गोलियां चल रही थी, वो विक्टोरिया नोलैंड जो थी वो मिठाई बांट रही थी लोगों को जो वहां मैदान में डिमोंस्ट्रेटर्स थे जो है। तो आप किसी के मुल्क में जाकर के ये सब करवाएं और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि उसके बाद आपको उससे फायदा होगा। अब मगरिब वालों के समझ में कुछ आने लगा है कि वो कुछ कर नहीं सकते वहां पर। वो जो यूरोपियन यूनियन है वो 30% अपनी एनर्जी के लिए, अपनी गैस और ऑयल के लिए रूस पर पर डिपेंडेंट है। जर्मनी जो है वो 38% गैस और तेल वहां से लेता है। इटली जो है वो बेइंतहा लेता है। 6 ममालिक तो 100% रूस के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी आज मैं देख रहा था एक इंटरव्यू यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो चेयरमैन, वो कह रहा था कि हम यूरोपियन यूनियन बड़ा खुशकिस्मत है कि वो उस मुल्क के करीब है जहां पर कि गैस और ऑयल की पैदावार है और वह बहुत करीब है उससे जो है।
जी जी।
तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बात जो है कि अब शायद नेटो को पहली बार पता चला। देखिए, नेटो को 2013 में बड़ी शिकस्तें हुई हैं। एक तो अफगानिस्तान में वो अपना पूरा कब्जा नहीं कर पाए, एक रैग टैग जिसको कहेंगे पश्तून आर्मी को वो शिकस्त नहीं दे पाए वहां पर जो है। दूसरी तरफ सीरिया में उन्होंने कोशिश की थी कि हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए। ये सारा नेटो का प्रोग्राम था कि असद की गवर्नमेंट को हटा के अपनी हुकूमत लाई जाए, लेकिन एक तो सीरिया के अवाम की जद्दोजहद और दूसरी तरफ आपके कि मगरबी मालिक के अवाम जो है वो जंग करने के खिलाफ थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वोट दिया कि हम सीरिया में जंग नहीं करना चाहते हैं। और तीसरी बात थी कि रूस की सकाफती हिकमत अमली जो थी उसने भी मजबूर कर दिया कि वहां पर कोई नेटो का इंटरफेरेंस ना हो। तो इससे इनको बड़ी शिकस्तें हुई हैं और वो रूस से बहुत नाराज हैं इस बात से कि रूस ने जगह जगह इनको अपनी हिकमत अमली से शिकस्त दी है, और इस शिकस्त का बदला लेने के लिए वो यूक्रेन में जो है वो गड़बड़ करवा रहे थे और समझ रहे थे कि यूक्रेन जो है अगर ये हाथ में आ गया तो फिर बहुत है। लेकिन आपको मालूम है कि तारीखी तौर पर रूस पर जितनी बड़ी ताकतों ने हमला किया है, खासकर 1941 में हिटलर ने जब अपनी डिविजन्स भेजी तो वो सब यूक्रेन के जरिए आई और उन्होंने रूस के ऊपर हमला किया। तो अब रूस जो है वो यूक्रेन को फिर एक मगरबी मालिक का अड्डा नहीं बनने देगा। जो भी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब,
कोशिश करेंगे
जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फैजी साहब, आप क्या कहते हैं, ये जो सूरत हाल बन रही है, यानी अब तक जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब जो जंग के हालात पैदा हो रहे हैं कि अमेरिका ने रूस पर इल्ज़ाम लगाया था इससे पहले कि रूस ऐसे हालात पैदा कर रहा है कि जिससे तीसरी आलमी जंग हो सकती है, और अभी चंद रोज पहले रूस ने यही इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी यूरोपी हुकूमतें यूक्रेन में मुदाखलत करके और नेटो को यूक्रेन की तरफ बढ़ा के रूस की सरहद के करीब लाने की कोशिश करके ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि जिससे तीसरी आलमी जंग का खतरा बढ़ रहा है।
देखिए, तीसरी आलमी जंग होगी या नहीं जी, ये कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है
जी।
लेकिन मैं पहले जो पाकिस्तानी दोस्त ने कहा कि दो तिहाई अक्सरियत वहां की खिलाफ है, तो वो रेफरेंडम से फिर क्यों इनकार कर रहे हैं? अगर दो तिहाई अवाम खिलाफ है तो दो तिहाई अवाम रेफरेंडम में अपनी राय दे देंगे। लेकिन चूंकि ये आजाद और शुमार ही गलत है जो मगरबी एजेंसियों के फराहम किए हुए हैं, इसलिए ये बात कही जा रही है। जहां तक यूक्रेन की बुनियाद पर आलमी जंग होने का ताल्लुक है, तो ये तो मुनासिर होगा कि यूरोपीय यूनियन और नाटो क्या करते हैं। ये बात पिछली एक दहाई के दौरान साफ हो चुकी है कि अमेरिका नाटो को इस्तेमाल करके दुनिया को यूनिपोलर वर्ल्ड या कुछ भी दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा था, और नाटो के ही नाम पर उसने इराक पर हमला किया, अफगानिस्तान में कब्जा किया और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी उसने मुदाखलत की। तो असल में दुनिया को जंग के खतरे की तरफ ले जाने की कोशिश तो अमेरिका की है, इसलिए कि जिस माशी बहरान से इस वक्त अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के ममालिक दो चार हैं, वो बहरान शायद अमेरिका और उसके माहिरीन माशिया की नजर में बगैर एक बड़ी जंग के हल नहीं हो सकते। 2008 में आलमी के साथ बाजारी का सिलसिला शुरू हुआ था। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन ये माशी बहरान खत्म होने के बजाय गहरा होता जा रहा है, और ऐसी हालत में शायद वो ये समझते हैं कि एक जंग उनको इस बहरान से निकाल सकती है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पहली और दूसरी आलमी जंगें भी आलमी माशी बहरान की पैदावार थी, और इनके जरिए ही माशी बहरान को हल करने की कोशिश की गई थी। इसलिए रूस पर ये इल्जाम लगाना कि वो जंग आलमी जंग की तरफ जा रहा है, इसलिए भी बुनियाद है कि रूस, चीन, भारत, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका, ये वो ममालिक हैं जिन्हें दुनिया में उभरती हुई मईसतों में गिना जा रहा है, यानी जिनका आलमी कसाद बाजारी पर की वजह से कोई खास असर नहीं पड़ा है। असर पड़ा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, उतना बोरान ज्यादा नहीं हुए हैं ये मुल्क जितने यूरोपीय यूनियन और अमरीका हुए हैं। इसलिए आलमी जंग की जरूरत तो अमेरिका को है, और इसीलिए वो ऐसी कार्रवाइयां कर रहा है जिसकी वजह से जंग हो और आलमी का साथ बाजारी के आलमी मंदी के बोरान से वो निजात पा सके। तो आलमी जंग अगर होगी तो उसके लिए बुनियादी तौर पर वो माशी बोरान है जिसका अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के ममालिक शिकार हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगा मसूद हुसैन साहब, जनाब देखिए, मगरिब ने खुल के यूक्रेन में मुदाखलत की थी। नवंबर 2013 से लेके 20 फरवरी तक जब मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए राइट सेक्टर के लोग ऐवान इख्तदार पे काबिज हुए, उस वक्त तक खुल के उन्होंने मुदाखलत की और उसको छुपाया भी नहीं है। खुद अमरीकी वजीर खारजा, जो नायब वजीर खारजा हैं विक्टोरिया नूलैंड, उन्होंने एतराफ़ किया है कि अमेरिका ने $5 अरब की रकम खर्च की है यूक्रेन में, तो यूक्रेन में ऐसा क्या है जिसके लिए अमेरिका इस हद तक जाने के लिए तैयार है?
देखिए, आपका आपका ये सवाल बड़ा मुनासिब है। पहले मैं आपके तवसुस से जो लंदन में साहब थे उनको चाहिए कि उधरा अपनी जबान पर काबू करें, इस तरीके से गुफ्तगु नहीं की जा सकती। देखिए, चार इलाके ऐसे हैं मशरकी और जुनूबी यूक्रेन में कि जहाँ पर लोग जो हैं वो रूस के कहने पे जो हैं वो आगे आ गए हैं और पाकिस्तान उन्होंने मुख्तलिफ इमारतों पर कब्जा कर रखा है। मैं रूस का एजेंट नहीं हूँ, ना मैं मगरिब का एजेंट हूँ, मैं एक एक ईमानदार तजिया करता हूँ, पाकिस्तान में भी करता हूँ, बाहर अमेरिका में भी करता हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें एक गैर जानबदार अंदाज से बात करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन का जो बहरान था बुनियादी तौर पर वो अमेरिका और यूरोप ने शुरू किया था। ये तो पहले में भी आपकी खिदमत दर्ज कर चुका हूँ। और अमरीका को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि क्रीमिया का जो मसला है वो बड़ी आसानी से इस तरीके से वो पुतिन साहब उस पर इल्हाक कर लेंगे, क्योंकि उनको तो बिल्कुल ये अंदाजा ही नहीं था। क्योंकि जब उनकी फौजें उतरी, 22,000 फौजें रूस की उतरी और उसके बाद ये कि उसी दौरान रेफरेंडम हुआ, तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि हमें मतलब ये कि ना मगरिब की तरफ झुकाव होना चाहिए ना रूस की तरफ। रूस के अगर इतना ही रूस अच्छा था तो अफगानिस्तान में से 14 लाख मुसलमानों को कत्ल किया, 8 साल अफगानिस्तान में रहा कि जहाँ पर कोई जमहूरियत का तस्वीर भी नहीं था, अब वहीं अमरीका मौजूद है। तो ये दोनों जो कुवतें हैं ये बाकायदा ये इस्तेमारी फिक्र की हामिल है, इस्तेमारी सोच की हामिल है, ये किसी की दोस्त नहीं हो सकती, इनके अपने मफादात हैं। और ये मफादात की मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि यूरोपियन यूनियन हो चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, आप देखिएगा कशीदगी इतनी ज्यादा बढ़ेगी। अभी तो सिर्फ सैंक्शन की बात की है बारक ओबामा ने और कुछ सैंक्शन लगे भी हैं, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सैंक्शन की जो अपनी एक एक कुव्वत तो होगी, लेकिन इसके बावजूद ही मेरा अपना ख्याल है कि आलमी जंग की तरफ यकीनी तौर पर कुछ महसूस ऐसा हो रहा है जैसे कि तजिया निगार लिख रहे हैं, लेकिन आलमी जंग नहीं होगी। मैं ही समझ रहा हूँ कि बातचीत होगी। और जहाँ तक मशरकी और जुनूबी इलाकों में रेफरेंडम की बात है, अभी रेफरेंडम का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि रेफरेंडम तो उस सूरत में होगा जबकि यूरोपियन यूनियन अमेरिका और पुतिन के दरमियान किसी किस्म की मफाहमत हो और उनके दरमियान इस मसले पे बातचीत भी हो रही है। अभी सरगेई योलोफ जो उनके वजीर खारजा हैं रूस के, उन्होंने कहा कि हम इस मसले पे बातचीत करेंगे। तो रेफरेंडम तो अभी सवाल ही, रेफरेंडम तो वहां हुआ है क्रीमिया में जहाँ पे लोगों ने 80% से ज्यादा वोट जो है वो रूस के हक में दिए, इसलिए उनके साथ इलाक हो गया। ये तो चार इलाकों में मतलब ये कि सूरत हाल बिगड़ी है। तो इस सूरत हाल बिगड़ी के सिलसिले में आप चाहते हैं कि वहां पर जो है दोबारा रेफरेंडम हो, ये तो पुतिन और अमेरिका के दरमियान बात तय पाएगी। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हमें ये सोचना चाहिए कि यकीनी तौर पर यह है कि ये पूरी नेटो की एक चाल थी कि वो किसी तरीके से एक ऐसा हिसार कायम करना चाहते थे रूस के खिलाफ जो जिसको कि पुतिन ने भांप लिया। और मैं मेरी अपनी राय यह है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ये नहीं समझ सके कि पुतिन इस तरीके से तैयार होकर और इतनी जल्दी वो एक्ट करेंगे, और उन्होंने मतलब ये कि अपना अमली मुशायरा भी किया। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो जो इब्तदा हुई है यूक्रेन में बहरान की और जो इस वक्त सूरत हाल जो है बिगड़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से दुनिया को बड़ी तशवीश है, खुद यूरोप को बड़ी तशवीश है कि खुदा ना खास्ता एक बार फिर जो है कहीं जंग ना छिड़ जाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अमरीका को ये तरीक़ेकार इख्तियार नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब रूस वही तरीका इख्तियार जो है मशरकी और जुनूबी इलाकों में कर रहा है जो कि मुनासिब नहीं है। एक रेफरेंडम में कामयाबी के बाद उनको चाहिए था कि क्रीमिया में बहुत से ऐसे मसाइल हैं और उन मसाइल को हल करने की तवज्जो दें, आईनी तौर पर तरमीम करें, वहाँ के लोगों के बहुत से ऐसी चीजें हैं जो जो उनकी डिमांड थी, डिमांड पे गौर करें और इसके बाद कंसोलिडेट कर लेते तो फिर मशरकी और जुनूबी। लेकिन वो इतनी उजलत में, मैं बार बार आपकी खिदमत अर्ज कर रहा हूँ कि पुतिन इतनी उजलत में आगे की तरफ जा रहे हैं कि जो उनके लिए बाद में पसपाई का और निदामत का भी सबब बन सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आगा मसूद हुसैन साहब। इसी के साथ हम शमीम फैजी और प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ के भी शुक्रगुजार हैं। बहरहाल, इस वक्त यूक्रेन के हालात बहुत तेज़ी के साथ ख़राब हो रहे हैं। जहां तक यूक्रेन के मसाइल की बात है तो रूस ने एक तजवीज़ और भी पेश की है कि यूक्रेन में अगर फेडरल निज़ाम हुकूमत कायम किया जाए तो उससे भी हालात पर काबू पाया जा सकता है। बहरहाल, प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@rtv.ir। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपके